ब्रह्मा जी शिव जी उनका ध्यान भंग हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। शिव जी अपने डमरू बजाकर जो नृत्य करते हैं वो नृत्य करना बंद कर देते हैं, डमरू बजाना बंद कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं यूं ही। ब्रह्मा जी विस्मित होकर कमलासन के ऊपर बैठ जाते हैं और अनंत शेष भी झूमने लगते हैं। तो ये भगवान के बांसुरी का पहला नोट है, पहला धुन। दूसरे धुन से यमुना जी का जल जो इस तरह चल रहा है वो पीछे चलने लगता है, रिवर्स में जाता है, रिवर्स गियर में दूसरे धुन से। तीसरे धुन से चांद अपने कक्षा में रुक जाता है, चांद नहीं जा पाता, सोमदेव भी वहां शब्द रह जाते हैं। चौथा धुन है जिससे कि गाय वृंदावन के सब श्री कृष्ण के पास दौड़ के आते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते, जहां भी हैं वो सीधे कृष्ण के पास आते हैं और इस अमृत का पान करते हैं, बड़े प्रेम भरे आंखों से उनको देखते हैं। ये अगले श्लोक में वर्णन आएगा, तो कल जब हम 13वें श्लोक का वर्णन करेंगे तो ये चर्चा करेंगे। और ये गाय इस अमृत का पान करते हैं और वो पात्र कौन से हैं उनके पान करने के लिए, उनके कान, वो कान सामने करके इनका पान करते हैं। फिर पांचवा जो धुन है वो गोपियों को भगा के ले आता है, गोपियों को पागल कर देता है, गोपियां अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां पे आ जाती हैं। आपने कई बार वर्णन सुना होगा कि जब श्री कृष्ण वंशी वट पे गए यमुना के तट पर वृंदावन में और त्रिभंग ललित रूप में धारण बांके बिहारी अपने शरीर को तीन जगह बांक के जब बांसुरी बजाने के लिए शुरू कर दिया तो वृंदावन की गोपियां सब कुछ छोड़कर उनके पास भाग के चली आई। कोई गोपी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चों को नीचे रख के भाग गई। कोई गोपियां रसोई घर में खाना पका रही थी, रसोई को आधा करके भाग गई। कोई गोपियां अपने कपड़े पहन रही थी, जल्दी जल्दी में नीचे के कपड़े ऊपर, ऊपर के कपड़े नीचे पहनकर भाग गई। कोई गोपियां अपने सास ससुर को पति को भोजन खिला रही थी, वो लोग ले रहे थे, वहीं के वहीं रखकर भाग गई। इस जो भी कार्य गोपियां कर रही थी उनको आधा छोड़कर भाग गई, क्योंकि ये जो पांचवा नोट है, पांचवा जो धुन है, इतना प्रभावशाली है गोपियों के लिए, खास गोपियों के लिए भगवान ये बजाते हैं ये धुन, जिससे कि वो आकर्षित होकर पागल होकर वहां पर भाग जाते हैं। वैसे एक बार जब गोपियां, जबकि कृष्ण वृंदावन छोड़कर कई साल हो गए थे, तो ये ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र गए थे सूर्य ग्रहण के लिए। उस समय वहां पर द्वारका से भी श्री कृष्ण और अन्य द्वारकावासी आए थे। कई सालों के बाद ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया पुनः, तो हालांकि बहुत खुश थे लेकिन फिर भी कृष्ण को इस वेशभूषा में देखकर वो खुश नहीं हुए, क्योंकि यहां पर बड़े ठाठ से आए थे श्री कृष्ण, बहुत सारे नौकर चाकर थे और वो रथ पे सवार होकर आए थे, सोने का मुकुट वगैरह पहना हुआ था, राजा बनकर आए थे, वो क्षत्रिय बनकर आए थे। लेकिन वृंदावन के कृष्ण से ये गोपियां प्रेम करती थी, द्वारका के राजा कृष्ण से नहीं, महाराज कृष्ण से नहीं, वो गोविंद श्याम सुंदर कृष्ण से प्रेम करते थे। तो खैर, तो एक गोपी खासकर श्रीमती राधा रानी दूसरे गोपी से कह रही है, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मीलितस् तथा हंसा राधा तद इदम उभय संगम सुखम तथाप्यंत खेलम मधुर मुरली पंच मजुषे मनो मे कालुन्न पुलिना विपिनाय स्प्रहियति। राधा रानी दूसरे गोपियों को कह रही है, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी, हे सहचरी मतलब हे सखी, ये कृष्ण जो हमारे लिए बहुत प्रिय है, प्रिय सो अयम, ये कृष्ण जो हमारे लिए बहुत प्रिय है, हम उनको बहुत सालों बाद पुनः मिल रहे हैं कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र मीलितस्य तथा अहम् सा राधा तद इदम्। ये वही कृष्ण है और मैं वही राधा हूं। उभयो संगम सुखम, अब हमारा मिलन हो चुका है, हमें बहुत खुशी हो रही है। परंतु तथापि फिर भी अंतः खेलन, फिर भी मैं वो उस दृष्टि को चाह रही, वो कृष्ण को चाह रही हूँ। अंतः मतलब अंदर वृंदावन में खेलन, वो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? मधुर मुरली, अपने मुरली का मधुर तान वो है, वो खेल रहे हैं। पंचम जुषे, पांचवे धुन में, पांचवे स्वर में, खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे। मनो में कालिंदी पुलिन विपनाय स्प्रहियती, मेरे मन में वो उस कृष्ण के बारे में मैं सोच रही हूँ। हालांकि ये कृष्ण मेरे सामने है और मैं भी राधा वही हूँ, हम दोनों मिल रहे हैं, सुख है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण जो कालिंदी पुलिन मतलब यमुना के तट पर विपनाय वहां के कदम्ब वृक्षों के बीच में खड़े होकर कृष्ण जो पंचम जुष अपने मुरली पर बजा रहे हैं, उस कृष्ण के बारे में मैं सोच रही हूं। क्योंकि ये जो पंचम जुष मुरली का, ये उनको सबको आकर्षित करता है। तो यह है पांचवा धुन इस बांसुरी का। छठा धुन जब भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं तो उससे शरद ऋतु निर्माण हो जाता है और साथ में सब कुछ हरा भरा हो जाता है, सारे फूल सब कुछ वाखिल उठते हैं, सब कुछ सुंदर दिखाई पड़ता है। हम सुन चुके हैं कि वृंदावन के छह ऋतुओं में से सबसे सुंदर शरद ऋतु है। और शरद ऋतु का सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? बराबर है, उनकी बांसुरी का वादन, यही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। शरद ऋतु के कई ऐश्वर्य हैं, प्राकृतिक सौंदर्य तो अतुल्य है शरद ऋतु में, लेकिन सबसे बड़ा ऐश्वर्य शरद ऋतु का है कि इस समय ज्यादा करके कृष्ण भगवान ये छठा धुन बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, जिससे कि गोपी आकर्षित होते हैं और शरद पूर्णिमा के समय खास करके ये रासलीला होती है। तो शरद पूर्णिमा के समय क्यों ये रासलीला होती है? क्योंकि शरद का ऐश्वर्य है कृष्ण की बांसुरी, और कृष्ण की बांसुरी से सारे गोपियां पागल होकर आकर्षित होकर कृष्ण की ओर चल पड़ती है। और ऐसे इस छठे धुन से पत्थर भी पिघल जाते हैं, इतना मधुर होता है। मधुर मुरली पंचम जुषे। फिर सातवां धुन ये होता है जिससे कि छह ही ऋतु एक साथ निर्माण हो जाते हैं। ये वृंदावन है, वृंदावन की छह ऋतुएं ये भौतिक जगत की छह ऋतुओं के बराबर केवल बाहरी दृष्टि से दिखते हैं। यहां ऋतुएं एक के बाद एक क्रम से जाती हैं, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के बांसुरी के सातवें धुन से छह ऋतु एक साथ भी आ सकते हैं और अपने पूरे शान से हर एक ऋतु अपने अपना लक्षण प्रकट करेगा। और आठवां धुन जो कि सबसे शक्तिशाली है, उससे क्या होता है? श्रीमती राधा रानी को आकर्षित करता है खास करके। और श्रीमती राधा रानी अपने मन की शांति को भंग कर देती हैं, आत्म संयम को खो बैठती हैं और इतने भ्रमित हो जाती हैं कि वो अपने काजल जो है वो कहीं दूसरी जगह अपने पैरों पर लगा, चरणों में लगाने लगती हैं, कुमकुम अपने आंखों में लगाने लगती हैं, नीचे के कपड़े ऊपर, ऊपर के कपड़े नीचे, ऐसे पहनने लगती हैं, और जो नूपुर है वो अपने हाथों में पहनने लगती हैं। तो पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है। तो ये है कृष्ण भगवान के अलग अलग तरह के बांसुरी बजाना। वैसे कृष्ण के बांसुरी बजाने से सब जगह चमत्कार हो जाता है। जैसे गोपियों ने माता यशोदा को कहा था, हर दिन हर क्षण कृष्ण भगवान बांसुरी के बजाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से जो गोपियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है बांसुरी के वादन का, गोपियां अब सोच रही हैं या देख रही हैं कि ये प्रभाव देवियों के ऊपर भी हो रहा है जो कि इन विमानों में चल रही हैं। तो कैसा प्रभाव पड़ रहा है? यहां पर गोपियां कहती हैं स्मर नुन्न सारा कि कामदेव, स्मर मतलब कामदेव, कामदेव से उनका जो हृदय है वो विचलित हो जाता है, मुमुहुर वो भ्रमित हो जाते हैं, भ्रष्ट प्रसून कबरात प्रसून वगैरह फूल जो उनके बालों में है वो सब गिर जाते हैं, विनीज यह उनके जो कमर की पट्टी भी है वो भी हल्के हो जाती है। तो इस तरह से ये गोपियां सोच रही हैं कि ठीक है ये जो हिरणियां हैं वो अपना आत्म संयम खो बैठे और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो कृष्ण के पास चले गए। हम समझ सकते हैं क्योंकि आखिर ये तो मूर्ख है, ये तो पशु जाति है, लेकिन ये देवियां तो पशु जाति नहीं है, मूर्ख नहीं है, बड़े सुसंस्कृत देवता समाज से हैं, और ये भी अगर कृष्ण को देखकर उनकी बांसुरी को सुनकर अपना आत्म संयम खो बैठती हैं इस तरह से, तो फिर लोग हमें क्यों दोष देते हैं? हमारा क्या बड़ा दोष इसमें? हम तो देवियों जैसे इतने सुसंस्कृत परिवार से तो नहीं है, हम तो साधारण गांव की छोरियां हैं, हमें क्या मालूम ये देवताओं। और ये लोग सब कुछ छुपाने में बड़े निपुण रहते हैं, और ये लोग भी अपने आप को रोक नहीं सकते देवियां, तो हमें क्यों दोष देना चाहिए? और आखिर ये जो कृष्ण है वो तो हमारे गांव के हैं वो, और देवियों के लिए तो वो विदेशी हो गए, तो हमारे गांव के किसी प्रति के व्यक्ति के प्रति वो भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए, तो लोग हमें क्यों बुरे नाम रखते हैं? ये ठीक नहीं है। तो गोपियां इस तरह से सोच रही हैं। तो फिर एक गोपी पूछती है कि क्या कारण है कि देवियां इस तरह से अपना आत्म संयम खो बैठी हैं, जो कि साधारणतः अपने आप को बड़े अच्छे तरह से रोक के रख देती हैं। तो दूसरी गोपी समझाती हैं कि इस समय जो कृष्ण बांसुरी का वादन कर रहे हैं वो एक ऐसा शुद्ध राग बजा रहे हैं जिसमें अन्य किसी राग का मिश्रण नहीं है, और जो कि गंधर्व लोक में भी सुना नहीं जाता। आप तो जानते हैं कि गंधर्व लोक के निवासी संगीत विद्या में बड़े निपुण है, तो अगर कोई अच्छी तरह से गा रहा है, वो अच्छी तरह से वाद्य बजा रहा है, तो हम क्या कहते हैं? ये तो गंधर्व की तरह गा रहा है। इसलिए कई शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायकों का नाम भी ऐसे गंधर्व से जुड़ा जाता है ना, कुमार गंधर्व, बाल गंधर्व, उनको गंधर्व कहते हैं कि गंधर्व की तरह वो गाते हैं। तो यहां गोपियां कह रही हैं कि जिस राग में, जिस धुन में अभी कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, इसके बारे में गंधर्व लोक में भी उनको ज्ञान नहीं है, और ये धुन जो है जो अब बजा रहे हैं ये बहुत विशेष है, ये मनोज्ञ है। मनोज्ञ मतलब मन की बात को जानने वाला ये धुन है। ये धुन जब जाता है तो हरेक व्यक्ति के मन की बात क्या है जानता है, और उसके अंदर जो भी भावना है उस हिसाब से ये प्रभाव डालता है उस व्यक्ति के हृदय के ऊपर। जिस भावना में वो व्यक्ति या जिस रस में वो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करना चाहता है, ये बांसुरी की ध्वनि जो है जाकर उसको प्रेरित करता है। और जो अपने हृदय में श्रृंगार रस में या माधुरी रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो ये मनोज्ञ ध्वनि जो है जाकर उनके अंदर श्रृंगार रस को उत्तेजित करती है। तो ये है कारण। गोपियां विश्लेषण कर रही हैं कि क्यों ये देवियां इस तरह से विचलित हो गई हैं, उत्तेजित हो गई हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग चीजें लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं, लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि एक ही चीज अलग अलग प्रभाव करता है अलग अलग लोगों के ऊपर। संसार में अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छी चीज देखे तो जो भोगी व्यक्ति है वो उसके बारे में एक दृष्टि से देखेगा, जो भक्त है वो अलग दृष्टि से देखेगा। अगर हम जंगल में जाते हैं तो अगर कोई भक्त होगा, तपस्वी होगा, वो देखेगा अरे तपस्या करने के लिए कितनी सुंदर जगह है। कोई व्यापारी जाएगा, देखेगा अरे कितने अच्छे अच्छे झाड़ काट के बहुत पैसा मिलेगा। तो देखने का दृष्टि वही चीज है, लेकिन अपनी भावना के अनुसार इन चीजों का प्रभाव हमारे हृदय के ऊपर अलग पड़ जाता है। तो ठीक उसी तरह से ये मनोज्ञ ध्वनि जो है वो जाकर अलग अलग प्राणियों के बीच में उनके हृदय में जो भी भावना है उसको विकसित करता है, उसको उत्तेजित करता है। तो इसलिए यहां पर इन देवियों के हृदय में सिंगार रस को फिर से प्रेरित कर दिया है ये कृष्ण भगवान के बांसुरी में। तो देवताएं अब गोपियां कह रही हैं कि देखो ये जो देवियों के साथ में उनके पति भी हैं, मतलब देवतागण भी हैं, और ये देवतागण भी उन हिरणियों के पति के समान हैं, क्योंकि ये भी महान भक्त हैं, और वो देख रहे हैं अपने आंखों के सामने कि उनकी पत्नियां कृष्ण को देखकर अपना आत्मसंयम खो बैठे हैं, लेकिन ईर्ष्या नहीं करते, उनके हृदय में जलन नहीं होता, वो उनको रोकते नहीं है, बल्कि ये जो देवतागण हैं, क्योंकि वो भी महान भक्त हैं, वो खुश हो जाते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे ऐसे पत्नियां हैं जो कि इतने महान भक्त हैं कृष्ण के, और ये देवतागण भी समझ लेते हैं कि हमारी पत्नियां भक्ति में हमसे आगे बढ़ चुकी हैं, हमारा सौभाग्य है ऐसे पत्नी प्राप्त हुए हमें, इसलिए वो प्रेरणा देते हैं उनको भक्ति में। और इसलिए जब वो व्रजलीला देखने के लिए आते हैं, कृष्ण को वृंदावन में देखने के लिए आते हैं, तो अपने पत्नियों को भी साथ में लेकर आते हैं। तो फिर गोपियां सोच में पड़ जाती हैं कि देखो ये लोग तो देवतागण हैं, सारे ब्रह्मांड को नियंत्रण करने वाले हैं, बहुत बड़े लोग हैं हमारे लिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ सत्तते वेतरो जनः, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है ना कि जैसे श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, जैसे वो आचरण करते हैं, वैसे जनसाधारण आचरण करता है। तो जब ये देवता अपने पत्नियों को नहीं रोकते हैं कृष्ण से, कृष्ण के पास जाने के लिए, तो हमारे पति ऐसा क्यों हमको रोकते हैं? यहां वृंदावन के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब देवतागण हमारे लिए एक आदर्श है, वो नहीं रोकते, तो उनको हमें रोकना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। इस तरह से देवियां गोपियां जो हैं ऐसे सोचते रहती हैं। फिर देवतागण देवियों के साथ में आते हैं, कृष्ण भगवान को उतर कर तो या तो वहां से ही वो सुंदर स्तुतियां अर्पण करते हैं, गुणगान करते हैं कृष्ण का, किस तरह से कृष्ण ने सृष्टि की रचना की है, किस तरह से कृष्ण ने कितने असुरों का वध किया है, इत्यादि इत्यादि कृष्ण के सुंदर रूप का भी वर्णन करते हैं, और फिर वो नमस्कार करके चले जाते हैं। तो उधर कृष्ण भगवान के साथ जंगल में ग्वाल बाल होते हैं, ये ग्वाल बाल सब देख रहे हैं हंसते हंसते, अरे क्या देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं हमारे कृष्ण को, क्योंकि ग्वाल बालों के हृदय में कोई ऐश्वर्य भावना नहीं है कृष्ण के प्रति, जो कि देवताओं में है। तो देवतागण जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, वो उनको भगवान मानते हैं, तो जोर जोर से अट्टहास करते हैं ये ग्वाल बाल, हो बहुत जोर से हंसते हैं कि देखो कितने मूर्ख है ये देवतागण, ये सो बोल रहे हैं कि हमारे कृष्ण ने असुरों का वध किया, अरे ऐसे मूर्ख कोई हो सकता है, अरे देखो कृष्ण ये क्या बोल रहे हैं, देवतागण बोल रहे हैं तुमने असुरों का वध किया, अरे ये नहीं जानते कि असुरों का वध क्यों हुआ, क्यों हुआ बोलो वध, क्यों हुआ इसलिए कि तुम्हारे पिता नंद बाबा ने इतने तीव्रता से विष्णु को प्रार्थना की, तुम्हारे पिता नंद बाबा माता यशोदा ने पूर्व जन्मों में कितने पुण्य किए, इसलिए भगवान विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हुए और तुम्हारे शरीर में आकर विष्णु ने वास्तव में असुरों का वध किया, तुमने थोड़े किया, अरे तुम तो हमारे साथ भी युद्ध नहीं कर सकते, हम भी तुमको हरा देते हैं, तो तुम भी क्या असुरों का वध करने वाले हो। वास्तव में जो बोल रहे थे वो सही था, वास्तव में विष्णु ने ही वध किया था, क्योंकि कृष्ण वध नहीं करते किसी का, कृष्ण के अंदर सारे अवतार विष्णु सब निवास करते हैं। तो जब कृष्ण भगवान केवल लीला करते हैं, गायों को चराते हैं, खेल क्रीड़ा करते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, असुरों को मारने का काम विष्णु करते हैं, लेकिन जिस दृष्टि से ग्वालबाल देख रहे थे वो सत्य नहीं था। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि ग्वालबालों को तत्व ज्ञान नहीं था, उनके लिए कृष्ण भगवान नहीं है, उनके लिए कृष्ण केवल उनके मित्र हैं। तो फिर जोर जोर से वो मजाक करने लगते हैं देवताओं का। फिर एक ग्वालबाल खड़ा रहता है, तीन ग्वालबाल उसके पीछे पीछे आते हैं, और दो ग्वालबाल उसका चेहरा जो है दूसरे के कंधे पर यहां रखता है, दूसरा ग्वालबाल आके उसके दाहिने कंधे पर रखता है, तीसरा ग्वालबाल उसके पीछे खड़े रहकर पीठ से पीठ लगा के खड़ा रहता है। क्यों? ब्रह्मा जी चार मुख हो गए ना, तो ब्रह्मा जी का नकल करते हैं। और एक लड़का होता है अपने उतरिया निकाल देता है और धूली को लेता अपने सारे शरीर पर लगा देता है, और एक ऐसा कोई फूल लेता है जो अर्धचंद्र के आकार में है और अपने बाल में रख देता है, और फिर डमरू का आवाज अपने मुंह से करता है, पागल की तरह नाचने लगता है, और बाकी लोग बहुत अट्टाहास करते हैं, हा 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 करके हंसते हैं, और फिर अन्य ग्वाल बाल हाथ जोड़कर नकल के सम्मान देते हुए कृष्ण के पास हाथ जोड़कर बोलते हैं, वो पुरुष सूक्त प्रार्थना बोलते हैं, और बोलते बोलते अपने हंसी को रोक रहे, रोक नहीं पा रहे हैं, अंदर से हंसी आ रही है बाहर, क्योंकि वो मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये लोग आके प्रार्थना करते हैं कृष्ण को, तो हम भी जाके करेंगे, तो कृष्ण का भी मजाक उड़ा रहे हैं और देवताओं का भी मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी आ रही है, फूट फूट कर हंसी, लेकिन किसी न किसी तरह से अपने आप को रोक रहे हैं वो, और साथ साथ हे भगवान हे प्रभु कह रहे हैं, और कृष्ण भगवान को बड़ा मजा आ रहा है इसमें। वास्तव में वैष्णव आचार्य बताते हैं कि जब गोपियां श्री कृष्ण के प्रति गुस्सा होकर कुछ बोलती हैं अपने मान में, या जब माता यशोदा कृष्ण को डांटती हैं कि जल्दी चले आओ घर में अभी खाने का समय हो गया, या तो फिर ग्वाल बाल जब उनका मजाक उड़ाते इस तरह से, तो इन वाक्यों से कृष्ण को जो अति दिव्य आनंद मिलता है वो आनंद बड़े बड़े ऋषि मुनियों के देवता गणों के पुरुष सूक्त प्रार्थना और गुणगान से भी नहीं मिलता, क्योंकि इन पुरुष सूक्त और अन्य प्रार्थनाओं में ऐश्वर्य होता है जिसमें कि वो कृष्ण को भगवान मानते हैं। लेकिन वृंदावन के निवासी वरिष्ठ गोपियां तरुण गोपियां ग्वाल बाल इनके जो वचन होते हैं इनके वाक्य होते हैं इनमें कोई ऐश्वर्य भावना नहीं है, भले ही वो कृष्ण को डांटे कृष्ण के ऊपर गुस्सा होए कृष्ण को का मजाक उड़ाए, फिर भी इसमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम से भरा हुआ है ये ब्रज स्नेह जिससे कृष्ण का हृदय पिघल जाता है। कृष्ण भी दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे भी उनका मजाक उड़ाते हैं, इस तरह से ये ब्रजलीला चलती है वृंदावन में। आश्चर्य अहो आश्चर्य, आप किसी भी अन्य धर्म के लोग आदमी को जाके बोलिए कि ऐसे कोई भगवान का मजाक उड़ाता है तो वो तो कहे ये तो बड़ा अपमान हो अपराध हो जाएगा, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान का कोई ऐसे मजाक उड़ा सकता है और भगवान को इसमें आनंद आ सकता है। इसलिए ये भागवत धर्म खास करके व्रज का धर्म इतना विशेष है, ये बड़ा गुह्य रहस्य है, और ये केवल भक्तों के संग में पाया जा सकता है। तो इस तरह से गोपियां सोच रही हैं कि देखो एक और है ये हिरणियां जो नीच जाति की हैं, मतलब पशु जाति की हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं कृष्ण के पास जा सकती हैं बिना रुकावट के, और दूसरी ओर है ये स्वर्ग की देवियां जो ऊंचे जाति के हैं, उनको भी कोई रुकावट नहीं कृष्ण के पास जाने के लिए, वो भी आराम से जा रही हैं, उनके पति भी उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन कारो हम बीच में रहने वाले मनुष्यों का, देखो हमें स्त्री का शरीर मिला, मनुष्य जाति में हम हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं जो ऊंचे जाति वाले और नीचे जाति वाले दोनों कर पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हमारे गोपी देह प्राप्त करने का, धिक्कार हो इस गोपी देह को, तो हमें देवियों का शरीर चाहिए या तो हिरणियों का शरीर चाहिए। हालांकि गोपी का शरीर सर्वश्रेष्ठ है भक्ति के लिए, जिसने गोपी का देह प्राप्त किया उसने अपना जीवन सफल कर दिया, सर्वोच्च श्रेय उसको प्राप्त हो जाता है, सर्वोत्तम सफलता परिपूर्णता उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन स्वयं गोपियां मानती हैं कि ये देवियां ऐसे हैं श्रेष्ठ हैं, ये हिरणियां श्रेष्ठ हैं इत्यादि, तो फिर ये प्रश्न अब निर्माण होता है कि जो गोपियां सोच रही हैं, प्रश्न ये आता है कि गोपियां जो सोच रही हैं देवियों के बारे में हिरणों के बारे में कि उनकी उनकी भावना क्या है, क्या ये सही है, क्या वास्तव में जो देवियां हैं उनके मन में वही श्रृंगार रस है जो गोपियों के अंदर है, या वो हिरणियों के बीच में क्या वही भाव है। इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि मूल बात तो ये है कि गोपियों का महाभाव है जिसमें स्थित होकर गोपियां सबको उसी भाव में देख रही हैं, इसको उद्दीपन भाव कहते हैं। उद्दीपन मतलब किसी भी चीज को देखकर उसमें कृष्ण का दर्शन करना, उसको उसका संबंध कृष्ण से जोड़ लेना। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी के भाव में होकर जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, कभी कभी समुद्र के तट पर जाते थे जहां वो चटक पर्वत देखते थे। चटक पर्वत एक स्थान है, आप में से जो जगन्नाथपुरी गए होंगे आपने देखा होगा। हम लोग जब गए थे तो हम चटक पर्वत तक नहीं जा पाए थे। तो चटक पर्वत मतलब वो बालू का रेती का के पर्वत होते हैं, और उनको देखकर चैतन्य महाप्रभु उसको गोवर्धन समझ बैठते और भागने लगते गोवर्धन की ओर, गोवर्धन गोवर्धन। कभी कभी वो समुद्र को देखकर इसे यमुना समझ जाते और कूद पड़ते यमुना में और समुद्र में। और कई बार ऐसे होता कि किसी को बिना बोले वो निकल जाते। और फिर क्या करते भक्त लोग कि उनको उनके कमरे में गंभीरा में बंद कर देते, रात को ताला मार देते बाहर से, ताकि वो बाहर निकल ना जाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु निकल जाते बाहर अपने पूरी तरह से प्रेमावेश में, भाव विभोर होकर वो कहां जाते, क्या करते, किधर भी चले जाते, फिर सुबह को नहीं मिलते। वो भक्त लोग चिंतित हो जाते, कहां गए, पता नहीं उनको कोई लग गया, कुछ शरीर में कुछ हुआ। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, बाहर से ताला होते हुए भी वो तो निकल ही जाते। और एक बार ऐसे हुआ कि वो निकल गए और कई घंटों तक दिखाई नहीं पड़े। सब लोग चिंतित हो गए, कहां गए चैतन्य महाप्रभु। सारे भक्तों में खबर फैल गई दावानल की तरह, और कुछ सब भक्त इधर उधर फैल गए, कोई इस दिशा में कोई उस दिशा में, हर दिशा में भक्त फैल गए। फिर थोड़े भक्त जो समुद्र के तट पर चलते हुए कोणार्क की ओर जा रहे थे, ये अनुमान लगाते हुए कि शायद चैतन्य महाप्रभु पहले की तरह समुद्र में प्रवेश कर गए होंगे, इसको यमुना सोचकर। तो आगे चलते चलते गए और वहां पर आखिर में उन्होंने देखा कि एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, जाली में अपने सब मछलियों को पकड़ के सब रखा था। उसको पूछा कि क्या तुमने हमारे महाप्रभु को देखा है, कैसे दिखते हैं महाप्रभु। ये मछली पकड़ने जो आदमी था वो पागल की तरह को बड़बड़ा रहा था। तो ने पूछा क्या देखा है तुमने। तो हाँ हाँ, उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहां थे, उन्होंने दो तीन बार थप्पड़ मार दिया उसको मुंह पे। तो वो मछली पकड़ने वाला कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम क्या हो गया है, मेरे ऊपर कोई भूत सवार हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तो उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सही अनुमान लगाया कि इसने चैतन्य महाप्रभु को देखा होगा या स्पर्श किया होगा। और वाकई फिर उन्होंने देखा कि एक जाली में चैतन्य महाप्रभु अंदर है, वो समुद्र में भाग बोर होकर ये चले तैर रहे थे और इस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने उनको पकड़ लिया था। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कभी समुद्र को यमुना समझते, कभी किसी वन में जाते तो उस वन को वृंदावन समझ जाते। ये उद्दीपन भाव। तो गोपियां भी इसी तरह से किसी भी चीज को देखते उसको राधा कृष्ण या गोप अपने आप को और कृष्ण को जोड़ लेते। जैसे कभी अगर उसने तोते और तोती को देखा, शुक और सारा, तो शुक को वो कृष्ण समझते और सार को वो अपने आप गोपी समझते। इसलिए हमें जानना है कि गोपियां अपने उद्दीपन भाव की वजह से, अपने कृष्ण से विरह की तीव्र दुख की वजह से, वो अपने ही श्रृंगार भावना को सबके अंदर देख रहे हैं। ये जो श्रृंगार रस है वृंदावन का, ये लक्ष्मी देवी के लिए भी उपलब्ध नहीं है। जो यज्ञ पत्नी है मथुरा के ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया। जब श्री कृष्ण भूखे थे उनको भोजन नहीं भेजा, यज्ञ अवशिष्ट नहीं भेजा, लेकिन उनकी पत्नियों ने भेजा। वो महान भक्त हो गए थे कृष्ण की, लेकिन फिर भी ये यज्ञ पत्नी जो है मथुरा और वृंदावन के तट पर है, अभी तक पूरी तरह से वृंदावन में प्रवेश नहीं कर चुके हैं। मथुरा के बाहर निकलने वाले हैं लेकिन वृंदावन में नहीं आ पाए हैं अभी तक। और ये तो देवियों से कई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, उनको भी प्रवेश नहीं मिला है। तो भले देवियों को वृंदावन के ऐसे लीलाओं में प्रवेश कैसे मिल सकता है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब जो गोपियां इन श्लोकों में बोल रही हैं वो सत्य नहीं है। केवल अपने हृदय की भावना से, अपने विरह से उनकी दृष्टि ऐसे हो गई है कि सभी को वो ऐसे श्रृंगार रस में देख रही हैं। इसलिए यहां पर वो देवियों का गुणगान कर रही हैं और कहते हैं कि काश हमारे अंदर भी देवियों की भावना होती। वास्तव में सत्य ये है कि देवियां प्रार्थना कर रही हैं कि काश हमारे अंदर गोपियों की भावना हो जाती। तो ये है गोपियों का प्रेम, वृंदावन का श्रृंगार रस, जो कि इन वेणु गीतों के अलग अलग श्लोकों से प्रकट हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न टीका टिप्पणी?
श्री कृष्ण के तीन तरह के वेणु है, तो कौन कौन से हैं और वो कब भर जाते हैं, कौन बोल सकते हैं?
कल समझाएंगे, क्योंकि पिछले साल इसका विस्तार में चर्चन किया था। पिछले साल भक्ति रसामृत सिंधु से एक का नाम है वेणु, एक है मुरली, अलग अलग नाम है उनके, अलग चीजों से बनाए हुए हैं। कोई बांस का है, कोई पत्तों का बना हुआ है, कोई रत्नों का बनाया हुआ है। ऐसे अलग अलग चीजों के, अलग अलग आयु के समय और अलग अलग अवसर के समय भगवान ये अलग अलग मुरलियां बजाते हैं। तो अगर आपको सुनना है तो कल संक्षेप में बताएंगे, अब सुनाएंगे थोड़ा समय लग जाएगा। हाँ करें। हरे कृष्ण।
मुझे जैसे बताते हैं कि गोपियां अपने मन की स्थिति बता रही है कि हमसे ये श्रेष्ठ है, और महान आचार्य भी बताते हैं कि हमसे ये श्रेष्ठ है, तो फिर हम बद्ध जीव अपने आप को श्रेष्ठ क्यों बताते हैं?
नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैष्णव को हमेशा सोचना चाहिए कि हम दूसरों से निम्न श्रेणी में है। जो सच्चा भक्त होता है वो कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता है, बल्कि ये एक भक्ति में प्रगति का लक्षण है कि अगर कोई भक्त वास्तव में प्रगति कर चुका है, वो अपने आप को कभी भी आगे बढ़ा हुआ भक्त नहीं समझेगा। तो इसलिए हमें भी ऐसे ही नम्र रहना चाहिए, हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि हमें कुछ वैष्णवता क्या है नहीं मालूम, अन्य वैष्णव ही हमारे प्रभु हैं, हमें इनके शरण में ही रहकर हमें वैष्णवता क्या है सीखनी चाहिए, ये हमारी भावना होनी चाहिए। जैसे गोपियों का, गोपियां जो है सबको श्रेष्ठ समझती हैं और अपने आप को निम्न श्रेणी के समझती हैं, तो महान वैष्णव ऐसे ही होते हैं। दीपन भाव है, वो दूसरा आलंबन भाव है। ये आलंबन भाव के बारे में जानना चाहते हैं, ये थोड़ा एडवांस विषय हो गया कि सब तक चर्चा करना है। ठीक है, कल संक्षेप में करेंगे चर्चा इसके बारे में। और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण।
हाँ
प्रभु जी, दैट इन द बॉम्बे वृंदावन we hear the description of so many of these animals and birds and all this. Do you understand that these jivas have achieved their transcendental position?
प्रश्न ये है कि वृंदावन में ऐसे कई पक्षियां हैं, पशु हैं इत्यादि, तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि इन्होंने अपने जीवन की संसिद्धि प्राप्त कर ली है? हो सकता है, क्योंकि हरेक जीव का भगवान श्री कृष्ण के साथ अलग अलग रस हो सकता है। कोई शांत रस में हो, कोई दास्य में हो, कोई अलग अलग रस में हो। तो ये वृंदावन की पशु पक्षियां भी साधारण नहीं है, और उनको भी जैसे गोपियों को सिद्ध देह मिलता है, प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है, उनको यहां भौम वृंदावन में जन्म लेना पड़ता है। हो सकता है इनको भी यहां पहले जाकर कृष्ण का संग लेकर फिर वो गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं, तो यह भी इनकी संसिद्धि है। अगर कोई वृंदावन में कोई पक्षी भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये भौम वृंदावन में जो हम पशु देखते हैं, जैसे बंदर हैं, कुत्ते हैं, सुअर हैं, ये खास करके तीन जाति ज्यादा संख्या में दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि इस भौम वृंदावन में जो इस तरह के पशु हैं ये भी ब्रजवासी हैं, इनका भी हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये शायद ये ब्रजवासी थे पहले, जिन्होंने कि कोई धाम में रहते हुए अपराध किए, जिनकी वजह से उनको ये एक जन्म मिला है जिसमें से वो अपने पूर्व किए हुए जन्मों में किए हुए अपराधों से मुक्त हो सके, क्योंकि इस पशु शरीर में तो बहुत पीड़ा दुख होगा। ये कष्ट भुगतने के बाद जब वो अपराधों से मुक्त हो जाएंगे तब फिर वो वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। और किसी ने हाथ उठाया था?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
हम देखते हैं कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण और राधा रानी एक साथ रहते हैं, लेकिन भौम्य वृंदावन में कृष्ण और राधा रानी अलग अलग रहते हैं, इसका क्या क्या कारण है? क्या माधुर्य रस बढ़ाने के लिए ऐसे अलग अलग रहते हैं?
नहीं, गोलोक वृंदावन में भी कृष्ण और राधा अलग अलग रहते हैं, केवल भौम वृंदावन में नहीं, गोलोक वृंदावन में भी छुप छुप के भगवान कृष्ण जाते हैं प्रयास लीला करने के लिए, और रात में चले जाते हैं इस परकीय रस को और बढ़ाने के लिए। हालांकि एक दृष्टि से देखा जाए राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं होते, लेकिन फिर भी दिन में गायों को चराने जाते हैं भगवान कृष्ण गोलोक मूल गोलोक वृंदावन में, और रात में रासलीला करते हैं, और दिन में भी गाय चराते चराते कभी कभी ग्वाल बाल इस षड्यंत्र में उनका साथ देते हैं कि वो भी कभी कभी कृष्ण को छुप छुप के दिन के समय भी मिलाने के लिए वो व्यवस्था करते हैं। एक ओर से श्रीमती राधा रानी की जो सहेलियां होती हैं वो मदद करती हैं, दूसरी ओर जो उनके मित्र होते हैं जैसे सुबल आदि, वो भी उनको राधा रानी के मिलने से व्यवस्था करते हैं। इसका मतलब है कि वृंदावन में अन्य जो भी रस है वो केवल माधुरी रस को बढ़ाने के लिए है। जैसे सुबल वो तो सख्य रस में है, लेकिन माधुरी रस को बढ़ाने के लिए वो भी व्यवस्था करते हैं। तो वृंदावन की विशेष बात यह है कि माधुरी रस के अलावा जो भी रस हैं, उनका काम यह है, अपना भी उनका रस होता है, लेकिन प्रमुखतः वो माधुरी रस को पोषण करते हैं, माधुर रस को बढ़ाने की उसकी वृद्धि करने में मदद करते हैं। तो अगर राधा कृष्ण एक साथ रहते तो वो स्वकीय हो जाता, लेकिन ये परकीय रस को जानने के लिए वो अलग अलग रहते हैं, और फिर कभी कभी योजना होती है बीच में मिल जाते हैं, फिर उनको अलग होना पड़ता है। तो ये गोलोक वृंदावन में भी चलता है। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्णा।
कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने बांसुरी के धुन से दीक्षा दी है, वैसे शिवजी भी वैष्णव हैं और उनको दीक्षा किसने दी है और वो कैसे दी?
शिवजी ये भी महान वैष्णव है, उनके आराध्य देव हैं संकर्षण, वो हमेशा ध्यान देते करते हैं संकर्षण के ऊपर, और उनसे भी संप्रदाय शुरू होता है। लेकिन हालांकि रुद्रदेव संप्रदाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन ज्ञान की शुरुआत उनसे नहीं होती है, वो संकर्षण से होता है। तो जैसे ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान ने दीक्षा दे दी इस तरह से, वैसे शंकर को भगवान शिव जी को संकर्षण भगवान ने दीक्षा देकर उनको ज्ञान दिलाया है, क्योंकि वो उनके आराध्य देव हैं।
तब बताया जाता है कि गोलोक वृंदावन में टाइम पास नहीं होता, टाइम डजंट नो, एंड आपने बताया जैसे सुबह में और रात को, मतलब रात को राधा रानी कृष्ण में से, सो इट्स इनकंसीवेबल, तो कैसे अंडरस्टैंड?
प्रश्न ये है कि ब्रह्म संहिता में बताया जाता है कि काल का प्रभाव गोलोक वृंदावन में नहीं है, तो फिर ये कैसे है कि गोलोक वृंदावन में सुबह दिन का समय है, रात का समय है, और रात को रासलीला होती है, दिन में गाय चराते हैं, तो ये कैसा है? ये तो काल का प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि काल की उपस्थिति नहीं है, लेकिन काल शक्ति अपने अलग स्वरूप में, मूल स्वरूप में वहां रहती है। काल शक्ति जब यहां काम करती है भौतिक जगत में, तो इस भौतिक जगत के ऊपर काल शक्ति का परिणाम अलग से रहता है। जब काल शक्ति भौतिक जगत के ऊपर तीन गुणों के ऊपर काम करती है तो ये तीर के समान चलता है, जिससे कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल हो जाता है। और ये काल शक्ति के प्रभाव से इस दुनिया में सारे चीजों का घटन होने लगता है, विनाश होता है। लेकिन काल शक्ति जब भगवान के धाम में काम करती है तो काल का तीर बहता है लेकिन उसमें विभाजन नहीं होता और उसमें किसी चीज का घटन नहीं होता, किसी चीज का नाश नहीं होता, बल्कि उल्टा होता है। चीजों की वृद्धि होती है, चीजों का विकास होता है, आनंद बढ़ जाता है। यहां काल हमारे आनंद को क्षीण कर देता है लेकिन वहां काल आनंद को बढ़ाता है। तो वहां भी काल है लेकिन अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने भक्ति वर्धक स्वरूप में, ठीक है। तो वहां भी दिन है, अलग अलग समय होते हैं। कहां से प्रश्न आ रहा है? माइक का आचा पीछे। हाँ,
शक्ति तत्व में कितने गुण रहते हैं?
शक्ति तत्व में कितने गुण रहते हैं, मतलब भगवान के 64 गुण और नारायण के 60 गुण और शिव जी के 55 गुण, जीवात्मा के 50 गुण, तो शक्ति तत्व के कितने गुण? वैसे श्रीमती राधारानी के बारे में भी गुणों का वर्णन श्री भक्ति रसामृत सिंधु में किए हुए हैं। लेकिन ये गुण और वो गुण अलग है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो गुण हैं, ये गुण अगर जीवात्मा में हो सकते हैं कण मात्रा से, तो शक्ति तत्व में कैसे नहीं हो सकते। लेकिन ये जो गुणों का वर्णन आता है, केवल ये वैशिष्ट्य दिखाने के लिए कि जो श्री कृष्ण में है वो नारायण में नहीं है, जो नारायण में है वो शिवजी में नहीं है, जो शिवजी में है वो ब्रह्मा जी में नहीं है, और जो ब्रह्मा जी में है वो साधारण जीवों में नहीं है। तो इस तरह की गणित की तुलना शक्ति तत्व से भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी के भी कई गुण हैं जिनका वर्णन विस्तार में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ सकते हैं। राधा रानी भी सद्गुण संपन्न है, उनके अंदर जो गुण है वो कृष्ण के अंदर भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान के ऐसे आकर्षक गुण हैं कि वो सभी को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए उनका नाम है मनोहर, मन का हरण करने वाले, या उनका नाम है हरि, जो सबका मन हरण कर लेते हैं, या यहां तक कि वो मदन या कामदेव का मन भी हर लेते हैं। इसलिए उनका नाम है मदन मोहन, मदन को मोहित करने वाले। लेकिन श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, मदन मोहन का मन भी मोहित कर लेती है। तो क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रीमती राधा रानी के गुण कृष्ण से भी श्रेष्ठ होने चाहिए? तो तत्व के दृष्टि से हम ऐसा समझ सकते हैं। इसने राधा रानी और गोपी से इतना प्रेम करते हैं तो फिर वह उनको छोड़कर द्वारका क्यों चले गए? केवल प्रकट लीला में चले गए, अप्रकट लीला में तो वो व्रज में हमेशा रहते हैं। कल इस बात की चर्चा हो रही थी, केवल प्रकट लीला में ऐसे हुआ, अप्रकट लीला में वैसे ही चल रहा है। तो बात यह होगा, ये प्रश्न उठेगा कि प्रकट लीला में भी भगवान ने ऐसे क्यों किया? हमें दिखलाने के लिए कि ब्रजवासियों का प्रेम क्या चीज है। अगर कृष्ण हमेशा वहां रहते तो गोपियों की विप्रलंब सेवा हम समझ नहीं पाते। विप्रलंब सेवा मिलन की सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि जो उस विरह में जो गोपियों ने प्रेम अनुभव किया, जो आनंद अनुभव किया, वो मिलन के समय भी नहीं अनुभव किया उन्होंने। इसलिए गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में समझाया जाता है कि ये विरह का प्रेम मिलन के प्रेम से श्रेष्ठ है। ये सिखलाने के लिए प्रकट लीला में भी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका चले गए। इसलिए उन्होंने द्वारका के सबसे श्रेष्ठ भक्त, जिनका नाम है उद्धव को वृंदावन भेजा, क्योंकि कृष्ण ने देखा कि शायद उद्धव सोच रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा भक्त हूं द्वारका में। तो कृष्ण ने उनको वृंदावन भेजा कि जाओ देखो असली भक्ति क्या चीज है। ऐसा नहीं है कि उद्धव की असली भक्ति नहीं है, लेकिन वृंदावन का जो भाव है उसको जाके देखो। तो उद्धव को इस कारण भेजा कि जाके तुम गोपियों के और ब्रजवासियों के मन को शांत करना, जो क्योंकि मेरे विरह में तड़प रहे हैं, मेरा संदेश उनको देना। इस बहाने उद्धव को भेजा, लेकिन वास्तव में तो उद्धव को वो समझाना चाहते थे कि ब्रज प्रेम क्या चीज है। और वहां जाकर उद्धव तो चकाचौंध रह गए। और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि मैं वृंदावन में एक घास का तिनका बनना चाहता हूं। कृष्ण के मकर कुंडल का विशेष क्या है? कर्षक चीज है, एक आभूषण है भगवान कृष्ण का, जो कि माता यशोदा उनको पहनाती हैं। जैसे उनको सोने का हार भी पहनाती है माता यशोदा, जिसमें शेर के नाखून होते हैं, शेर के नाखून से बनाया हुआ हार भी पहनाती हैं। तो ये अलग अलग आभूषण हैं जो कृष्ण के ऊपर माता यशोदा पहनाती हैं, कृष्ण को ज्यादा और सुंदर बनाने के लिए। तो ठीक है, काफी समय हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद।